है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से। आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर। ये मेरा जीवन बदल गया यीशु तेरे आने से। आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर। ये मेरा जीवन नया जीवन। ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से। आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर। ये मेरा जीवन पथ पावन। ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से। आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर। ये मेरा जीवन
¶
मेरा कुछ भी नहीं था, सारे अपने हुए पराए, तेरा नाम हुआ है जहन रोशन, यीशु तूने दिया है मुझे अपनापन, ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से, आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर, ये मेरा जीवन बदल गया है यीशु तेरे आने से, आया है उजाला मेरे मन के अंधियारे में सवेरा लेकर, ये मेरा जीवन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि यूहन्ना ने देखा कि चारों दिशाओं में स्वर्गदूत खड़े हैं कि पृथ्वी, समुद्र और पेड़ों को हानि पहुंचाए बिना वह उन्हें आदेश देता है कि पहले उसके लोगों पर मुहर लगाया जाए। मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन कर सकें। पिता परमेश्वर, इस समय हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए आपसे हमारी विनती है जो अलग अलग स्थानों पर रेडियो के निकट आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। पवित्र आत्मा, आप उनकी सहायता करें ताकि हर एक जब के आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक कमी घटियों को उन्हें दिखाने पाए ताकि प्रत्येक जीवन आपकी ओर फिरने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से या बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी अपनी दया दृष्टि प्रदान करें ताकि हर एक जीवन आप में चंगाई को प्राप्त करे, शारीरिक रीति से, आत्मिक रीति से, ताकि वे आप पर और अधिक विश्वास करने पाए। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दे। प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हम सब इन दिनों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर ने इसराइल के 144,000 भक्तों पर मुहर लगाई, परंतु अन्य जातियों में भी असंख्य जनों पर मुहर लगाई गई। प्रत्येक गोत्र में से 12,000 पर मुहर लगाई गई थी जो 144,000 का 12वां भाग है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि कोई कैसे इसे शब्द जाल में बुनकर अपने आप को या इसराइल से अलग किसी और समूह को इसकी संज्ञा दे सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि पुराने नियम में बार बार परमेश्वर द्वारा आकर राज्य की स्थापना का उल्लेख किया गया है। यह पहले 1000 वर्ष का राज्य होगा जो परख का समय होगा। इसके बाद यह राज्य अनंत काल के लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहां इसराइल के 12 गोत्रों के नामों का उल्लेख किया गया है। एक लेखक का कहना है कि इन गोत्रों की सूची बाइबल में 13 बार आई है। दूसरा लेखक कहता है कि यह सूची 18 बार दी गई है। मैं नहीं जानता कि किसी बात की गारंटी कैसे लोग ले लेते हैं। हर एक व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बातों को रखता है, परंतु जब जब इसराइल के गोत्रों का नाम आया है वे 12 ही हैं। कभी कभी कुछ अंतर आता है जिसका कारण मैं समझ नहीं पाता हूं, परंतु यह अवश्य समझता हूं कि इसमें परमेश्वर का कोई उद्देश्य निश्चित है जो उसके मन में ही है। इस सूची में कुछ विशेष बातें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, परंतु उनके बारे में गहराई में जाना आवश्यक नहीं है। सबसे पहले तो आप यह देखेंगे कि यहूदा का नाम सबसे ऊपर है, जबकि रूबेन का नाम पहला होना चाहिए क्योंकि वह पहला उठा था, परंतु अपनी घोर अनैतिकता के कारण उसने अपना यह अधिकार खो दिया था, परंतु सूची में उसका नाम है। एक प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, पाप करके विश्वासी क्या उद्धार से वंचित हो जाएगा? जी नहीं, परंतु वह प्रतिफल से वंचित हो जाएगा। स्पष्ट बात तो यह है कि उद्धार प्राप्त विश्वासी तो अनेक हैं, परंतु पाप में गिरने के कारण उनको प्रतिफल से वंचित होना पड़ता है। रूबेन परमेश्वर के इस व्यवहार का एक अति उत्तम उदाहरण है। यही सिद्धांत यहां प्रस्तुत किया गया है। अपना पहला स्थान खोने के कारण उसका मान सम्मान भी खो गया, परंतु पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ था। उसका भी नाम है, परंतु नामांक 2 बार है। यहूदा को प्रमुख स्थान दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसके 8 से 10 पद में हम इसे देखते हैं। इसी गोत्र से प्रभु यीशु आया था। मेरे प्रियो, हम देखेंगे कि दान और एप्रेम के नाम नहीं दिए गए हैं, क्योंकि ये दोनों गोत्र ही इसराइल को मूर्ति पूजा में भ्रष्ट करने के दोषी हैं। इतिहास में आप देखेंगे कि दान इसराइल का सबसे पहला गोत्र था जिसने मूर्ति पूजा आरंभ की थी। न्यायों की पुस्तक उसके 18 अध्याय के 30 पद में आप इसे पाएंगे। दान का गोत्र आगे चलकर बछड़े की पूजा का मुख्यालय था। बछड़े की पूजा के द्वारा यरोबाम ने इसराइल से पाप करवाया। इसे हम पहला राजाओं की पुस्तक 12 अध्याय उसके 28 से 30 पद में पाते हैं। प्रभु राज में दान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का अर्थ है कि परमेश्वर का अनुग्रह उतरकर किसी पापी का आवश्यकता को पूरी कर सकता है। जी हाँ, दान का गोत्र प्रभु राज में तो है, परंतु वे महाक्लेश के समय गवाह होने के लिए मुहर अंकित नहीं है। मेरे विचार में इस गोत्र ने बड़ी हानि उठाई है। एप्रेम भी मूर्ति पूजा का दोषी था। होशे नबी की पुस्तक 4 अध्याय के 17 पद में लिखा है, एप्रेम मूर्तों का संगी हो गया है, इसलिए उसको रहने दो। यहां एप्रेम से अभिप्राय है संपूर्ण उत्तरी राज्य अर्थात इसराइल, जिसका अगुआ एप्रेम था, और इसराइल राज के विभाजन में एप्रेम की मुख्य भूमिका थी। इसे आप पहला राजाओं की पुस्तक 11 अध्याय के 26 पद में पढ़ सकते हैं। मेरे मित्रों, 144,000 मुहर अंकित इसराइलियों के गोत्रों में एप्रेम के स्थान पर यूसुफ का नाम लिया गया है और दान के स्थान पर लेवी का। लेवी याजकों का गोत्र था और वे महाक्लेश के युग में गवाह होंगे। यह अति उचित है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर अब फिर से इसराइल की ओर ध्यान दे रहा है। उसने इसराइल का त्याग नहीं किया है। देखिए होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसके 8 पद में वह कहता है, हे अप्रेम मैं तुझे कैसे छोड़ दूं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और परमेश्वर ने उनका त्याग नहीं किया। वे महाक्लेश में बचे रहेंगे जबकि वे उस युग में परमेश्वर के गवाह होने से चूक जाएंगे। मेरे मित्रों, पुराना नियम इसराइल के लिए की गई भविष्यवाणियों से भरा हुआ है कि वे एक अविनाशी राष्ट्र होंगे और अपने देश में सर्वथा वास करेंगे। यदि आप नए नियम के युग में यह कहें कि अब इसराइल नहीं रहा और इसराइल के साथ परमेश्वर को अब प्रयोजन नहीं रहा, तो आप पुराने नियम का अभिप्राय और मनसा का विरोध करते हैं। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भविष्यवाणियों के सब मुख्य विषय आकर ठहर जाते हैं। अतः आप यहां इसराइल की उपस्थिति की आशा करेंगे और देखेंगे कि वह यहां है। बाइबल में इसराइल का अर्थ इसराइल ही है, कलीसिया नहीं है। यदि परमेश्वर की कलीसिया शब्द काम में लेना होता तो वह कलीसिया स्पष्ट कहता, क्योंकि यथा समय उसने कलीसिया को कलीसिया ही कहा है। जी हां, इस समय कलीसिया यहां उपस्थित नहीं है, अतः वह इसराइल के बारे में ही चर्चा कर रहा है, और उसमें से 144,000 उसकी गवाही के लिए मुहर लगाकर अलग कर दिए गए हैं। ये 144,000 उसके गवाह होंगे और महाक्लेश में बड़ी हानि उठाएंगे। यदि उन पर मुहर न लगाई गई होती तो वे महाक्लेश में निर्वाह नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने गवाह बिना नहीं रहता है। आइए हम आगे देखेंगे अन्य जातियों में उद्धार प्राप्त जन समूह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 और 10 पद में लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है इसके बाद मैंने दृष्टि की। यहोना देख रहा है और सुन भी रहा है, कहता है और देखो एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था। अब कोई कहे, आपके कहने का अर्थ क्या यह है कि मनुष्य गिन नहीं सकता है? वह कंप्यूटर के युग में नहीं था। जी हां, उसके कहने का अर्थ था कि वह जन समूह इतना बड़ा था कि यदि कोई गिनना चाहे तो गिन ना पाए। मैं उनकी संख्या की कल्पना नहीं करना चाहता हूं, परंतु निश्चय ही वह जन समूह आश्चर्यजनक था। उसकी संख्या गिनना एक मनुष्य का काम नहीं था। आगे कहता है हर एक जाति और कुल और लोग। ये अन्य जाति लोग सूर्य के नीचे हर एक स्थान से थे। इसका अर्थ यह है कि महाक्लेश के युग में राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये 144,000 गवाह उन 7 वर्षों में इतना अधिक प्रचार करेंगे जितना कलीसिया ने आज तक अर्थात 2000 वर्षों में नहीं किया है। हम अपने सेवा कार्य पर घमंड ना करें, क्योंकि हमने अधिक जनों में सुसमाचार नहीं सुनाया है, परंतु महाक्लेश के युग में असंख्य मनुष्य उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, यह मेरा अपना अनुमान है। धर्मशास्त्र कहीं भी इसकी चर्चा नहीं करता है। जब तक प्रभु अपनी कलीसिया को उठा ना ले तब तक कुछ नहीं होगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर कलीसिया के उठाए जाने से पूर्व संसार को सुसमाचार सुनने का अवसर प्रदान करेगा। सुसमाचार सुनाने के अनेक साधन हैं, जैसे रेडियो, टेप, सीडी, टेलीविजन, लिखित वचन और मौखिक प्रचार। आज कुछ प्रचारक हैं जो असंख्य जनों में सुसमाचार सुना रहे हैं। कुछ रेडियो प्रसारण सेवाएं हमसे कहीं अधिक प्रचार कर रही हैं। यदि आप सबको जोड़ करके देखेंगे तो संसार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। मेरे प्रियो, आगे लिखा है, सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह जन समूह महाक्लेश से बचकर आया है और वह अपने उद्धार के लिए आनंद मना रहा है। मैं फिर कहता हूं कि परमेश्वर के उद्धार के महान दिन तो भविष्य में आने वाले हैं। यह भी संभव है कि इस जन समूह में महाक्लेश के शहीद जन भी थे जो अंत तक विश्वास योग्य रहे। इसी युग की चर्चा करते हुए प्रभु यीशु ने जैतून के पर्वत पर कहा था, मत्ती रचि सुसमाचार 24 अध्याय के 13 पद में, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उन्होंने अंत तक धीरज धरा। क्या उन्होंने दांत पीसकर, मुट्ठी बांधकर या कमर कसकर धीरज धरा था? जी नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया था। उन पर पवित्र आत्मा की मुहर लगी हुई थी। लिखा है, श्वेत वस्त्र। यह प्रभु यीशु की धार्मिकता का प्रतीक है जो उन लोगों को ढांके हुए थी। हम अपनी धार्मिकता में परमेश्वर के समक्ष खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है। मेरे विचार में हम मैले चित्रों में परमेश्वर के समक्ष नहीं जा सकते हैं। लिखा है, खजूर की डालियां। जी हां, यह विजय का प्रतीक है, प्रभु यीशु मसीह में विजय का। यह जनसमूह उस महान विजय यात्रा के जुलूस का भाग होगा जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर लौट करके आएगा। विजय यात्रा का जुलूस अभी तक नहीं निकला है। जब प्रभु यीशु गधे पर सवार होकर यरूशलेम आया था तब वह एक प्रकार का विजय प्रस्थान था, क्योंकि वह इस पृथ्वी से कूच करने की तैयारी में था। उस समय वह क्रूस के मार्ग पर था। उस समय से उसके पास आने वालों का समूह बहुत बड़ा रहा है और महाक्लेश में भी एक विशाल समूह होगा। जब वह पृथ्वी पर लौट कर आएगा तब महाक्लेश में उसके लिए शहीद होने वालों का महान जन समूह अर्थात महान समूह प्रथम पुनरुत्थान में होगा और वे सब वहां होंगे। यह एक अद्भुत महिमामय चित्रण है जो यहां हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्रियो, हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7 अध्याय उसके 11 और 12 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और सारे स्वर्ग दूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। यह परमेश्वर की वैश्विक आराधना का एक सर्वोत्तम दृश्य है। उसके सृजित प्राणी उसकी उपासना करते हैं। यहाँ कलीसिया भी है, पुराने नियम के पवित्र जन भी हैं और महाक्लेश के भक्त जन भी हैं और स्वर्गदूत आराधना में सहभागी होते हैं। मैं स्वर्गदूतों के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। मैं विवाद नहीं करता, न ही किसी के साथ मतभेद उत्पन्न करना चाहता हूं, परंतु धर्मशास्त्र में कहीं भी नहीं कहा गया है कि स्वर्गदूत गाना गाते हैं। यहां वे कह रहे हैं, परंतु ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जन समुदाय उद्धार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जय जयकार हो, परंतु स्वर्गदूत परमेश्वर को गुणों और भलाई के लिए उसकी स्तुति करते हैं, उद्धार के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वे निष्पाप हैं और उनका पापों से उद्धार नहीं हुआ है। दूसरे शब्दों में वे उद्धार प्राप्त पापी नहीं है। स्वर्गदूत गाना गाने योग्य नहीं होंगे, परंतु मैं जो यहाँ गा नहीं सकता वहां पर अवश्य ही गाऊंगा। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि इस अध्ययन से स्वर्ग कैसा होगा, इसमें विषय, हमारा परिदर्शन और समझ विकसित होने लगेगी। विश्वासियों का विचार प्रायः यह है कि स्वर्ग में केवल उनका छोटा सा समूह या उनकी कलीसिया ही होगी। मेरे प्रियो, कलीसिया के अतिरिक्त भी वहां उद्धार प्राप्त मनुष्य होंगे। स्वर्ग में अनेक भक्त जनों को यह देख बड़ा अचंभा होगा। काश हमें यही यह बोध हो जाता, क्योंकि इससे हमारे मन में परमेश्वर के लिए प्रेम बढ़ जाएगा और हमें सच्ची आराधना की प्रेरणा मिलेगी, आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्रियो, प्राचीनों में से एक अब यूहन्ना को दृश्य का आंखों देखा हाल बताना चाहता है। क्या ही धन्य बात है कि प्रभु के लोग उसके नियत समय पर उसके पास होंगे। मेरे श्रोता मित्रों, आज आप उस पल का इंतजार ना करें। यदि आप परमेश्वर के वचन में से सुन रहे हैं तो आज ही प्रभु यीशु के पास आएं और उसके वचन में से सीखें, उसे ग्रहण करें, क्योंकि समय बहुत कम है। बार बार आपको यह मौका नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और आपके सामने है। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
तू जो आया मेरे जीवन।
जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय।